तीसरी चीज़ जो हमें, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या है, तहज्जुद। गफलत का एक बहुत बड़ा इलाज तहज्जुद की नमाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास से कि आपने फरमाया कि जो शख्स नमाज में खड़े होकर 10 आयतें पढ़े वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, और नमाज में खड़े होकर 100 आयतें पढ़ने वाला फरमाबरदारों में लिखा जाएगा, और जो 1,000 आयतें पढ़ेगा वो बेहद सवाब पाने वालों में लिखा जाएगा। ये हदीस मौजूद है अबू दाऊद में, आप ख़ुद भी जाके पढ़ें, सही है नासिरुद्दीन अल्बानी के नाते। आपको पता है कि 10 आयतें कैसे होती हैं? रात को सिर्फ उठकर 2 नफिल पढ़ें, और आप देखिए कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, आप कुल फलक और नास दोनों पढ़ ले, 10 आयतें हो गई। मुश्किल? सिर्फ हमारी फेवरेट 2 सूरतें रात को पढ़कर, अगर आपको मुझे तौफीक अल्लाह दे दे और अल्लाह दे तो हम उसको कबूल भी करें, अल्लाह के हुक्म से हम गाफिलों से निकल गए। और आप बताइए कि आज हम मुसलमानों में बच्चे बड़े जवान मर्द हर काम के लिए जाग लेंगे, मेहमान आ गया जाग रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाना है जाग रहे हैं, शादी के कोई दिन है सारे बहन भाई जमा है हम जाग रहे
मोबाइल के
हैं,
साथ जागते रहते हैं।
जागते रहते हैं ना मोबाइल। जी माशाल्लाह, अब तो किसी की जरूरत नहीं मोबाइल, घर में जिंदाबाद।
बड़े छोटे भी ऐसे
लेकिन
करते
हम
हैं,
नहीं
मोबाइल
जाग
याद
पाते तो
याद
अपने रब के लिए नहीं। देखिए तहज्जुद अल्लाह से प्यार का एक इजहार है। कोई आपके लिए थोड़ा सा केयर करे और रात उसकी नींद ख़राब हो तो आपको कितनी केयर होती है? आप कहते हैं हाय हमारी वजह से आपकी नींद ख़राब हुई, हमारी रात की फ़्लाइट थी आपको आना पड़ा, हाय अब हम आए हैं तो आप हमें खाना दे रहे। यानी मिसाल है कि आपके लिए कोई ऐसा करे तो आपको हर वक्त उसके ऊपर एक किस्म की फीलिंग आएगी। जब एक बंदा अल्लाह के लिए रात को जागता है उसको कितना प्यार आता है। हदीसें हमें मिलती हैं कि क़्यामत का दिन होगा और एक बंदा एक नेकी की कमी की वजह से परेशान होगा, सिर्फ एक नेकी की कमी। सबके पास जाएगा, माँ बाप भाई, चलो मैं इनसे ले आऊँ, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी, उस दिन आदमी भाग रहा होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे कि कोई मेरी आज नेकी ना मांग ले, तो उस वक़्त बिल आखिर अल्लाह को उस पर प्यार आएगा, तो फरिश्तों से कहेंगे कि जाओ तुम इसकी वो चीज़ लेकर आओ जो मैंने इसके लिए रखी हुई है। तो एक छोटा सा मोती डब्बिया में बंदा हुआ, बाज़ रिवायतों में गठरी आती है, फरिश्ते लाएंगे और उसकी नेकियों के परड़े में रखेंगे तो वो झुक जाएगा, और अल्लाह ताला उसको हुक्म देंगे कि जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। तो वो पूछेगा कि अल्लाह ताला ये आज आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरा एहसान नहीं है, ये तेरा ही अमल है। कहा तेरा अमल कैसे, मेरा कैसे ये अमल है? तो फिर वो अल्लाह ताला याद कराएगा कि फलां सर्दी की रात थी, सब सो रहे थे, तू भी सो रहा था, लेकिन मेरे खौफ ने तुझे जगा दिया, और फिर तू उठा, तूने वुजू किया और तूने 2 नफिल पढ़े। उस वक़्त मेरे खौफ से तेरी आँख से एक आंसू का कतरा छलका था, हाँ लड़ छलका था, याद तो वहाँ सब कुछ आएगा, कहेगा अल्लाह ताला वो कतरा मैंने मोती का बना के इस तरह छुपा दिया था कि कल क़्यामत के दिन तुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है। आप देखिए लोग आपके मेरे आंसुओं की कोई कदर नहीं पाते, वो तो और हमें शर्मिंदा ही कर देंगे कि क्या ज़रूरत थी ये करने की। बच्चा माँ के पास भागता हुआ जाता है और माँ को कहता है गले में दर्द है, माँ कहती है और खाओ खट्टा, यानी लोग तो हमें और भी ताने ही देते हैं। आप किसी के सामने भी अगर अपना दुख पेश करते हैं तो यकीन कीजिए अपनी इज्जत नहीं करते, अपनी इज्जत गंवाते हैं। तहज्जुद वो वक्त है, आप गीतें करें, शिकायतें लगाएं, आप रोना धोना करें, आप देखेंगे कि जो जिसका आपने गिला शिकवा करना रब से कर ले। हम किससे करते हैं ना, समझ है हम लोग कि हम इंसानों से करते हैं, जिसके बस बैठे तीसरे की बुराई, और एंड पे कहते हैं बताना ना आगे, तो भाई आपने मुझे क्यों बताया, नहीं मैंने तो दिल हल्का किया था। अच्छा आपने अपना दिल हल्का करके मेरा दिल बोझल कर दिया। सिर्फ अगर हमारे अंदर ये वसफ आ जाए ना कि मैंने अल्लाह के माँ सिवा को नहीं सुनाना अपना गम, किसी से शिकवा गिला कोई क्या करेगा। आप देखिए कि ज़ुबान की खेती इंसान को जब काटनी पड़ेगी क़यामत के दिन, उसको उस दिन समझ आ जाएगी कि मेरी जो टूटी फूटी बातें थी वो भी चली गई। तो तहज्जुद में अल्लाह ताला के साथ कुर्ब रखना है इंशाअल्लाह ताला। अब इसके लिए आदत कैसे डालें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, कैसे पढ़े, और कई फिर मसाइल पूछने लगते हैं, अच्छा सोना शर्त है, जागना शर्त है, दिस एंड दैट। तो ये कोई मसाइल की क्लास नहीं है, फिकी बात नहीं है, सिंपल सी बात आपको बताती हूँ आदत कैसे डालें। एक मैंने रिवर्ट के बारे में सुनाया था एक जगह, कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे मुश्किल अमल जो मुझे लगा वो फजर के लिए सुबह उठना था। क्यों भला? क्योंकि आदत नहीं होती, और नॉन मुस्लिम्स आपको होता है अपने हिसाब से सोते हैं, अपने से उठते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को कैसे आदत डाली, अब आपके मेरे लिए भी ये क्राइटेरियन है। ताकि हम भी देखें कि क्या हमें भी इतना फिक्र है सुबह उठने के लिए। वो कहते हैं कि मैं एक अलार्म लगाता जो नमाज से तकरीबन एक घंटा पहले होता था, तो उसको बिल्कुल मैं अपने साइड टेबल पर रखता था। अब जब वो अलार्म बजता मेरी आँख तो खुलती, लेकिन मैं नींद में आंखें बंद करके उस अलार्म को बंद करता और फिर सो जाता। पहला अलार्म, कहते हैं ठीक उसके 15 मिनट बाद का एक और अलार्म घड़ी में लगाता, तो वो घड़ी मैं अपने से ज़रा इतनी दूर रखता कि उसके अलार्म को बंद करने के लिए मुझे बेड से उतरना पड़ता। अब 15 मिनट में थोड़ी नींद तो खुली चुकी हुई थी ना, दोबारा नींद खुली जब अलार्म हुआ, तो कहते हैं कि फिर मैं उठता तो बेड से ज़रा सा दूर जाता, फिर आके लेट जाता। अब क्या हुआ, वो भी ख़त्म हो गया, फिर बेड पे आके सो गया। कहते हैं उसके बाद फिर 15 मिनट का अलार्म मैंने एक बाथरूम के बिल्कुल पास दरवाजे के घड़ी रखी होती थी। अब जब 15 मिनट अभी ज़रा सी आँख लगने लगी तो फिर मैं जाके सो गया। जब उठा वहाँ बाथरूम में गया तो वहाँ मैं फिर खुद को कहता था अब उठ तो गया हूँ, चलो मैं नमाज भी पढ़, चलो वजू तो कर लूँ, चलो बाथरूम यूज़ कर लूँ, बाथरूम यूज़ किया तो चलो अब वजू कर लूँ, वजू के चलो मैं 2 नफिल पढ़ूँ। ये है असल में जिहाद बिन नफ्स। यकीन कीजिए अल्लाह को इसकी बड़ी कदर है, थोड़े से शुरू कीजिए। आपको सो के उठना मुश्किल है ना, सोने से पहले पढ़ लें, रात को सोने से पहले 2 नफिल पढ़ लीजिए, आप ईशा के फौरन बाद 2 नफिल पढ़ लें, आप फजर के लिए जब उठे उसके पहले 2 पढ़ लें। आहिस्ता आहिस्ता अपने नफ्स को करें, क्योंकि हमारा जो नफ्स है ना ये बहुत ज़्यादा वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। जैसे बच्चा बिगड़ जाता है तो सर चढ़ता है ना, और उसकी जितनी बातें माने उतनी मनवाता है, तो नफ्स की भी बातें कम से कम माननी है। कोशिश कीजिए, याद रखिए मुसलमानों के घर, मुसलमानों की रातें रोशन होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा अपने घरों को कब्रिस्तान बनने से बचाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर कोई एक दफ़ा आया कि ज़रा मैं देखूँ अबू हुरैरा का मामूल क्या है, क्योंकि अल्लाह के नबी इनकी बड़ी तारीफ़ करते थे और इल्मी शख्सियत है मौजूद है। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं 3 रातें अबू हुरैरा के घर रहा हूँ और मैंने क्या देखा कि रात का पहला हिस्सा अबू हुरैरा जाए नमाज पे खड़े हैं और तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहे हैं। जब खुद सोने का इरादा फरमाते तो बीवी को उठा देते और फिर बीवी कुरान पढ़ती, और जब बीवी सोना चाहती तो फिर घर के ग़ुलाम को उठा दिया जाता कि उठो अब तुम पढ़ो। क्यों? कि घर हो अबू हुरैरा का और रात की कोई घड़ी अल्लाह के कुरान अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो, ये मुमकिन नहीं। अब इस क्राइटेरियन पे आज हम मुसलमान अपने घरों को देखें, हो सकता है हमारी भी रातों के 3 हिस्से हों, पहला इंडियन के लिए और दूसरा इंग्लिश के लिए और चौथा तीसरा तो उसके लिए जिसका तस्करा भी ना हो। आज हम अपनी रातों से अपने इस्लाम को पहचानें। याद रखिए कि जब अल्लाह ताला दुनिया में नेमतें दें और बंदा उसकी वजह से नमाजों से दूर हो जाए तो वो बवाल है। पहले लोग खुली छत के नीचे सोते थे तो तहज्जुद से पहले ही आँख खुल जाती थी सर्दी की वजह से। ज़रा सी अल्लाह ने और नेमत दी, पंखा लग गया, बरामदे में सोने लग गए तो वो बिल्कुल फजर के करीब ही आँख खुली, और जब से अल्लाह ने एसी दे दिया बंद कमरों में आके फजर भी गए। ये मसला है, ये ख़तरनाक बात है। दुनिया की आसाइशों ने हमारे बच्चों को आराम कोश बना दिया। बड़े बड़े नेक लोग फजर नहीं पढ़ते। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे हैरान होती हूँ, अलामा इकबाल ने आज से 200 साल पहले कहा था ना कि किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है तुमको नींद प्यारी है। बात तो सच है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुझ समेत हम सबको रात की कुछ घड़ियों में अल्लाह के आगे खड़े होने की तौफीक मिल जाए। अगली चीज़ जिससे गफलत का इलाज, जो बहुत बड़ा इलाज है, अब इसमें भी आपके जहन में बड़े सवालात होंगे लेकिन पहले समझ लीजिए, कब्रिस्तान की ज़्यारत करना। कब्रों की ज़्यारत एक ऐसी चीज़ है जिससे दिलों की गफलत दूर होती है और गाफिलीन से गफलत के पर्दे चढ़ जाते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पहले कब्रों पर जाने से मना कर दिया था, शुरू में मना किया क्योंकि शिर्क के भी आसार थे, लोगों का भी तज़किया नहीं हुआ था, ख़तरा क्या था कि कब्रों पे जाकर उनसे ही ना मांगने लग जाएं, तो शुरू में अपने मना कर दिया। फिर जब कुछ अरसा गुजर गया, लोगों की तरबियत हो गई, तो आपने फरमाया कि मैंने तुमको पहले कब्रों की ज़्यारत से मना किया था, अब ज़्यारत किया करो कब्र की, क्योंकि ये मौत और आखिरत की याद दिलाती है। और अब्दुल्ला बिन बाज आज के दौर के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, पहले गफलत के बारे में किसी ने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने वसीयत की थी कि तुम अपने घरों में ख़ानदान में जिसको भी गाफिल देखो उसको कब्रिस्तान में ले जाओ। आप कहते हैं कि ये एक बहुत नेकी और भलाई के कामों में से काम होगा कि जिसको भी गाफिल देखें उसको कब्रिस्तान ले जाएं। अब सवाल पैदा होता है कि कब्रिस्तान कौन जाए, औरत जाए कि मर्द जाए। अगर इबरत के लिए जाना है हर एक जा सकता है, किसी खास मौके के साथ नहीं। ईद के दिन सारे जा रहे हैं मुर्दों को सलाम करने, आज मुर्दों की ईद है, नहीं। 15 शाबान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बरसी वाले दिन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जुमेरातों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, 40वें के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब दिल करता है जाइए और वहाँ खड़े होकर सोचें ये किधर है। अब देखें, हम काफ़ी देर से इधर ढूंढ रहे थे, तो अखीर कली में पूछा तो उन्होंने कहा जाना किन के घर है, तो जब हमने नाम लिया शेख सलीम साहब के घर, तो कहता है वो जो फौत हो गए। तो फिर मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि देखिए, सब छोड़कर एक इंसान एंड पे कब्रिस्तान में पहुंचता है तो लोग उसका तारुफ ये करा, उन्होंने नहीं पूछा उनके बच्चे कौन, बेटे कौन, बोला हाँ वो जो फौत हो गए, तो हमने भी तो फौत होना है। तो कब्रिस्तान के साथ ताल्लुक़ इबरत का होना चाहिए, मर्द भी जा सकता है, औरत भी जा सकती है। हमारे यहाँ बस बड़ी बेकार सी बातें हैं जी, औरतें बरहना दिखती हैं और औरतों को मना, ऐसी कोई बात नहीं। मना के वहाँ जाके उर्स नहीं मनाने, मेले ठेले नहीं करने, वहाँ चिरागा नहीं करना, क्योंकि दौरे जाहिलियत में लोग इस तरह के काम वहाँ पे किया करते थे। और इस पर एक पूरी बुक मैंने पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल सीरीज़ की जो तफहीम सुन्ना बुक है, कबूर की ज़्यारत के बयान, तो आप सुन लीजिए, उससे काफ़ी सारा दुआएँ और मसाइल आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करती हूँ बहुत शौर के साथ, माशाल्लाह आपके 10-15 साल तक की उम्र के बच्चे, कब आप या आपके शौहर बड़े तमाम से उनको कब्रिस्तान लेकर गए? हम तो अपने बच्चों को लफ्ज कब्र से बचाते हैं, डर जाएंगे, खौफजदा होंगे। देखिए, कभी बच्चों को मौत के साथ इस तरह ना तारुफ कराइए कि मुर्दे को देखा तो डर जाएंगे, फलां मर गया तो खौफजदा होंगे। कई लोग मैयत वाले घर में बच्चों को नहीं लेके जाते, फिर दुनिया में मस्ती होगी तो और क्या होगा। अपने जवान होते बच्चों को भी लेकर जाए, उनको दिखाएं कि देखो इधर दादा अबू हैं, देखो इधर नाना अबू हैं, देखो इधर बाप है। आखिर बंदा है, पत्थर का तो नहीं बना हुआ ना, मिट्टी का बना हुआ है, उसको समझ आती है कि कल मैंने भी आना है। आज भी आप देखिए, किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरे हैं तो आपको खुद नहीं महसूस होता, और हम अपने हाथों से अपने कितने प्यारों को भेज चुके। कभी अपने एक एक प्यारे का नाम लेकर सोचिए वो किधर है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, नाना अबू को कब्र में गए हुए इतने साल हो गए, नानी अम्मा को कब्र में गए हुए इतने साल हो गए, फुला मामू कब्र में इतने साल से, और मैं इतने सालों में कहाँ कहाँ घूमी, किधर घूमी, कितना एक आज़ाद फिरता है एक इंसान। तो यकीन करें, उनका सोच के दिल बंद होता है। अभी इस कमरे में कोई आपको सिर्फ 2 दिन के लिए बंद कर दे तो आपको वहशत होने लगेगी, हालांकि इधर खिड़कियाँ भी हैं, रोशनदान भी है, सब कुछ है। तो लिहाजा कब्रों में जाने से पहले कब्रिस्तान की ज़्यारत करनी चाहिए। फिर अगली चीज़ जो गफलत को दूर करती है इंशाल्लाह, वो क्या है कि दुनिया के हाल पर तदब्बुर करें और गौर व फिक्र करें कि ये दुनिया है क्या, क्या है, एक पानी का बुलबुला। यहाँ की खुशियाँ आप देखिए कि मैल कुचैल की तरह से है, और इसी तरह से आप देखें कि इसकी लज्जतें ख़त्म होने वाली हैं। एक इंसान इतनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अचानक उस पर परेशानियाँ, बीमारियाँ लग जाती हैं, बदबख्ती आ जाती है। फिर आप देखते हैं कि आज का बहुत दौलतमंद कल का फ़कीर होता है। लखपति को कखपति बनते तो आपने भी देखा होगा, और चाहे कोई करोड़पति छोड़िए अरबपति हो, जब मौत आती है लोगों के कंधों पे सवार घर से निकलता है, तन पे वही चंद सफ़ेद कपड़े के टुकड़े, और फिर मिट्टी में उसको दफनाते हैं। ये है किस दुनिया की हकीकत, यानी इस दुनिया के साथ फना है, ये ख़त्म हो जाएगी और इसको मैं अब बदल नहीं सकते। सेहत है आज, कल बीमारी आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इख्तनिम खमसन कबल खम्स, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। इसमें एक चीज़ सेहत को, बीमारी से पहले मौत से पहले ज़िंदगी को, बुढ़ापे से पहले जवानी को, फ़क्र से पहले दौलत को। तो अपने आप को हमेशा इस रंग में देखिए कि कल मैं कहाँ होंगी। बड़े बड़े घर वीरान होते हैं, आपने देखे बड़ों के घर, आप याद करिए जो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के घर होते हैं, बाद में बच्चे अपने अपने घर बना लेते हैं, वो खंडर हवेलियाँ, दिल ही नहीं लगता, फिर वो किसी न किसी और शक्ल में चली जाती हैं। और आप याद रखिए कि बाज़ दफ़ा इस तरह के हालात होते हैं कि बड़े बड़े लोग दुनिया से चले जाते हैं, और एक जाता है फिर दूसरा जाता है, तो इस तरह एक दिन हम आप चले जाएंगे तो क्या होगा। अल्लाह के नबी ने इस बात पे कहा, तेरी ज़िंदगी में सुबह का वक्त आ जाए तो शाम का इंतज़ार ना कर, और अपना शुमार मुर्दों में कर, जिंदों में ना कर। हमें तो बस मौत से गम आने लगता है, डिप्रेशन है, ना 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 ये बात ना करो। अच्छा, आपने देखा हो कि जब बहुत करीबी की मौत होती है ना अपने घरों में, तो कोई ना कोई बच्चा बच्ची या कोई औरत या कमज़ोर दिल वाला थोड़े दिन के लिए बहुत इस तरह हो जाएगा, खामोश है या नमाज में तवज्जो कुरान में, तो ये तो अच्छी बात है। लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 इसको मरी ले जाओ, इसको खुश करो, इसका दिल बहलाओ। नहीं, वो वक्त जब आपका कोई प्यारा, कोई आपका करीबी चला जाता है ना, तो आपको वो वक्त है जिस वक्त आपको अपने जाने को सोचना है और इस दुनिया की हकीकत को समझना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, सोचते रहेंगे तो आपको एक वक्त आएगा कि खुद ब खुद दुनिया से समझ जाना याद आएगा। और हम क्या कहते हैं मरने पे, इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह के हैं, वह इन्ना इलैही राजिऊन, और हम सब को उसी की तरफ पलटना है। तो बड़े बड़े घरों के मालिक चले जाते हैं, हमने भी चले जाना है, हम तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े लोग थे। तो लिहाजा इस दुनिया पे बात करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, ट्रैश दिखाएं, देखो ये क्या है, कल का फ्रूट आज का ट्रैश है। जिस वक्त फल आता है घर में कितना फ्रेश लगता है, सिर्फ एक रात छिलके बिन में पड़े रहें, सुबह उठेंगे तो आपका नाक बंद होगा, इतनी थ्रूस होगी आपके किचन के अंदर। जो खाया हो गंदगी में जाके देखिए वॉशरूम टॉयलेट की बू क्या है, ये आपके मेरे टेस्ट का एंड है। कपड़े चीथड़ों की शक्ल में मेरे आपके सामने आ जाते हैं, तो क्या आपने मैंने नहीं जाना दुनिया से, और क्या हमेशा बैठे रहेंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि दीन की भी दावत दें तो लोग सोचते नहीं हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया कोर्स अनाउंस किया है, शायद इन्होंने आपको बताया होगा, ये आज फ्लायर रिलीज हुआ है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग अपने इदारे में ये तफसीर कोर्स शुरू कर रहे हैं। अब मैं कहती हूँ ये कोर्स क्या है, ये आपके मेरे लिए एक हुज्जत है, वल्लाह ही एक और हुज्जत है। वही बात है कि फबिया ये हदीस वादा हो यू मे, वक्त भी सहूलत का, दिन भी सहूलत के, वक्त भी थोड़ा सा, क्या सोच के कि आप सब आ सके। देखिए अगर अब हम दीन नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर अब हम इसके बाद, शायद ही अल्लाह हमारे नसीब में कर दे तो कर दे, वरना नहीं। क्या हमारे दुनिया के काम कभी ख़त्म होंगे, हम ख़त्म होंगे, काम नहीं ख़त्म होंगे, मसरूफियात ख़त्म होंगी, नहीं ख़त्म होंगी। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये बनाएं, अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए। 2-2.5 घंटे कुछ भी नहीं होते, और अगर हों भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6-6, 8-8 घंटे सुबह हमारे बच्चे स्कूलों में रहते हैं, 5 दिन जाते हैं, इसको सिर्फ 3 दिन रखा है, पीर मंगल बुध, और 2.5 से लेके 5, यानी 2.5 घंटे की टोटल क्लास है। बच्चों को खिला लें, पिला लें, सुबह सफाइयाँ करा लें, शाम का खाना पका लें। अमूमन इस वक्त पे बच्चे भी कहीं फिर ट्यूशन पे जा रहे हैं या सो रहे हैं, मैनेज कर लीजिए। लेकिन एक दफ़ा के सीखें, आप खुद फील करेंगे कि आज चिकन कर, एक डॉक्टर हैं, पता नहीं यहाँ आई हुई हैं कि नहीं, सुबह अभी हमारी क्लास में थी, इसी में फूट फूट के रोके गई मेरे सामने। डॉक्टर है आपके शहर की बहुत बड़ी, लेकिन वो कहती है कि आपकी एक पेरिस की स्टूडेंट है, इनकी कुलीग उसकी बहन है या उनकी फैमिली में। मैंने कहा आपको कैसे पता चला नूरुल कुरान का, तो कहने लगी हॉस्पिटल में मेरी कुलीग है तो उसकी बहन आपकी स्टूडेंट है, नाम बताया तो मैं समझ गई। कह रही उसने मुझे फर्स्ट टाइम नूरुल कुरान की ऑडियो भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा। फिर वो पेरिस से रोज उसके साथ सीख रही है, तजवीद वो कराती हैं उनको, और इधर सबीलुल जन्ना जो हम इधर भी शुरू कर रहे हैं उसका कोई लिंक देती हैं। वो कहती है मैं खुद वेबसाइट से जाके सुनती हूँ, और वो ऐसे रोई फूट के कहती है। फिर उसने मुझे अपने नोट्स दिखाए, कहती मैंने MBBS किया और वल्ला ही मैंने कभी नोट्स नहीं लिए थे, लेकिन देखिए मेरे हाथों ने कुरान के नोट्स लिए, और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अब सीखना शुरू किया। चले जाएंगे दुनिया से, यकीन करें इस कुरान को सीखे बगैर जो दुनिया से गया, मैं कहती हूँ उसने फीकी चाय पी है। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये कुरान पढ़ के इसको समझने की लज्जत आपकी ज़िंदगी को मीठा करती है। शुक्र गुजारियों से इतना खूबसूरत आज हमारा लेसन था, शुक्र गुजारी पर एक बुक पढ़ी है कि असल ज़िंदगी की चाशनी मिठास कब आती है, जब शुक्र आता है, और शुक्र आता ही तब है जब अल्लाह की किताब समझ आती है। वरना याद रखिए आज मरेंगे कल दूसरा दिन, किसने याद करना है हमें। कल हमारा लाहौर में दर्स था, मेरे लिए सारे शहर की क्रीम सिस्टर्स थी वहाँ, आपके इन लीड्स, आपके ब्रांड्स, आपके इस मुल्क की बड़े बड़े, वो जिनको कहना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने मल्ला वाली कैफियत दी, वो लोग बैठे थे। और ये तो चली गई थी बाद में, जो जाने तक वो अपने दुख और रोना धोना और जो खुशी और मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उस वक्त मुझे सिर्फ एक बात समझ आती कि अल्लाह का दीन सारी चीज़ों से बड़ा है। तभी तो ये मेरे सामने रो रही, डॉक्टर्स भी रोती हैं, एक लॉयर थी फूट फूट के रो रही थी अपने गम। तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरे दीन में इतनी बरकत है कि पढ़ा लिखा भी उसके पास आता है, अनपढ़ भी आता है, पैसे वाला भी आता है, इज्जत वाला भी आता है। ये अल्लाह के दीन की सच्चाई है। और इस तरह से फिर बात सुनते हैं लोग कि जैसे वाकई के हिले तो जैसे छनाके से कोई टूट जाएगा। कुछ सिस्टर्स थी एंड पे कहने की आज हमें कुछ कहें कि हम कुछ करें। मैंने कहा आप बताएं आप क्या नेकी करें। सारी कजन्स थी, दोस्तें मतलब फैमिली के भी थे और फ्रेंड। कहती अच्छा हम सब पर्दा कर लें, अपना हिजाब कर लें। मैं अपना तो हिजाब जो मैं लिया था बैग से निकाल के मैंने उन्हें कहा ये पकड़े जाए, मेरे हिजाब से शुरू करें, आप शुरू करें, मैं आपको और भी इससे भी अच्छे ला के दूंगी। फिर वो डर, अच्छा कर सकती हूँ, मैंने कहा कर सकती हैं। यकीन करे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन गफलत पड़ी हुई है। अच्छा, हम बाल खोल के फिरते हैं तो मैं गुनाह होता है? मैंने कहा और स्वभाव होगा आपको, पता ही नहीं, भूलपना गफलतों की वजह से है। तो प्लीज़ आप देखिए कि बच्चियाँ, और एक और चीज़ भी मैं आपको इस कोर्स की ज्वाइन करने की बताऊँ, आज हर दूसरा घर टूट रहा है। पहले तो मैं तीसरा कहती थी, दो में से तीन टूटते थे, अब तो जो मेरे मुशाहदे में चीज़ आती है कि एक जोड़ बन जाए, और अगर 6 माह साल गुजर जाए तो शुक्र करते हैं कि बात बन गई है, वरना इधर शादी 3-4 माह के बाद बातें चीतें, चौथे 5वें में लड़की घर चली गई, साल के अंदर मामला ख़त्म। ये कुरान है दवा। दुनिया के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ गए, माओं के साथ रबते इतने बढ़ गए, बेटी घर में बैठी माँ को दुख सुख सुना रही है, उधर उसका दिल नहीं लग रहा, इधर ये मसले, फारिग बैठे। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है आज हमारा रोग है वो फरागत है। मसरूफ़ नहीं, शादी के बाद गए मियाँ मसरूफ़ था, बच्ची का दिल ही नहीं लग रहा। हाय मियाँ तो रात को आते हैं, हाय ये तो मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या भाई इसको कुरान पढ़ाओ। आप देखिएगा कि अगर ये इस कैजुअल के साथ आप लेके चलते हैं, 3 दिन का कोर्स है, टाइम को सेटल डाउन करें, यकीन करें 2 से 2.5 साल पता भी नहीं चलेगा आपको, साल गुजर जाएंगे। तो ज़रूर आप इसको संजीदगी से लें, ये आपके इस शहर के लिए अल्लाह की एक रहमत है। और भी जगहों पे हो रहे हैं कोर्सेज, आप वहाँ चले जाएं, लेकिन ये चूँकि अब शुरू से शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह मैं ख़ुद जब इधर हूँ तो मैं इसको अपने सामने शुरू कराऊँगी, और आके देखें। मैं कहती हूँ कि किसी का कुछ बिगड़े तो भरत ले लें, मनी बैक गारंटी नहीं कह सकते, वक्त बैक नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और अगर अब हमने नहीं फिर सीखना तो फिर शायद ही हम कभी सीखें। अल्लाह ताला हमारी इन गफलतों को दूर करे, और गफलत का इलाज ही कुरान है। जितना आप कुरान पढ़ते हैं आपको इस दुनिया की बेसुबाती नज़र आती है। देखिए एक बुलबुला है, एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, और आज आप देख लीजिए कि हम बिल्कुल उस स्टेज पर खड़े हैं जहाँ कल तक हमारी माएँ थी। ऐसी है ना, हमारी माएँ उस स्टेज पे चली गई जहाँ नानियाँ थी, तो कल हमारा वक्त का पहिया कोई रुकना तो नहीं है। अब सब अपनी शादी का वक्त याद करें, आपको ऐसे लगेगा पलक झपकने में वक्त गुजर गया। कई लोग हैं जैसे हमारे एक बेबी पैदा हुआ किसी का, तो वो बच्चा है छोटा है, तो वो कहते नहीं हमें अपना बच्चा याद है, यानी पोते को देख कर कहते हैं ये तो हमें ऐसे लग रहा है हमारा बेटा ही है, इतनी जल्दी वक्त गुजर गया। तो लिहाजा इस दुनिया से अगली दुनिया की तैयारी में हम सबको इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर लेना है। और अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की रहमत से दूर है, और दुनिया व मा फीहा मलऊनुन, मलऊन के लफ्ज़ आते हैं, फरमाया लेकिन 3 चीज़ें, अल आलिम वल मुतअल्लिम, इल्म लेने वाला, इल्म देने वाला, और उनकी टेक केयर करने वाला, ये इस चीज़ से बचा हुआ है। बस कहते हैं एक बड़ा प्यारा जुमला है दुनिया और आखिरत पे, कहते हैं कि दुनिया और आखिरत दो सौकने हैं, जब इनमें से एक खुश हो जाए तो दूसरी नाराज़ हो जाती है, और ऐसा होना ज़रूरी है। यानी जितनी दुनिया बनाएंगे उतनी आखिरत ज़रूर रिस्क पे आएगी। दुनिया बनाने से मेरा दुनिया कमाना नहीं, दुनिया के पीछे गाफ़िल होना, वक्त का ज़िया। यकीन करें मैं हैरान, कल ही कुछ चीज़ें मेरे पे ऐसी खुली, 2-2 लाख रुपये की चादर कोई एक मुसलमान औरत अपने ऊपर ले सकती है? एक ड्रेस, आप आम, मैं शादी के ड्रेसेस की बात नहीं कर रही, आपके इस मुल्क में लोग एक एक गरम चादर 2-2, 2.5-2.5 लाख रुपए की लेते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये गफलत नहीं तौर के। और फिर उसके बाद कोई नेकी हो जाए तो बड़ी बात है, सर का एक बाल भी ढक जाए तो बड़ी बात है, कंधे ढक जाए बड़ी बात है, वो सिर्फ एक अदा के साथ लेने वाली चीज़ है। ये मुझे ऐसे लोगों से मिल के खबर मिलती है। तो याद रखिए कि बंदे का अपना बुत रह जाता है बस, फिर गफलत सारी अपनी ज़ात, पैसा अपने ऊपर, दीन पे जान निकलेगी, दीन पे भी लगाएं तो कुछ लगाएंगे कि चलो कुछ दीन पे भी लगा रहे हैं और अपने तो लग ही रहे। तो जितना ज़्यादा आप और मैं इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे उतना समझ आएगा। बस कहते हैं कि एक इंसान की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई कुछ देर के लिए सो जाए, ख्वाब देखे, अब जो ख्वाब में देखा था उसको बहुत अच्छा लगा, या फिर उसको बहुत डरावना ख्वाब आ गया और इतने में उसकी आँख खुल गई, क्या हुआ? सच बताइए, जिसने अच्छा ख्वाब देखा था उठने पे वो खुश होगा कि परेशान? नहीं, परेशान होगा। हाय वो करोड़ रुपया ख्वाब में मिला था, हाय वो माँ ने जोड़ा ख्वाब में ले दिया था, अब तो हकीकत नहीं है। अच्छा, और जिसने दुखी ख्वाब देखा उठने पे उसका क्या होगा? खुश होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब था। बस ये है आपकी मेरी दुनिया। इस दुनिया के धोखे से, इसके फ्रेब से बचना, इसकी चमक के पीछे जो एक ग्लैमर छुपा हुआ है उससे बचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसानी करेगा। फिर अगली चीज़ जिससे आपकी मेरी गफलत के पर्दे चाक होते हैं वो है जन्नत और जहन्नुम का तذکرہ। कल का जो दर्स उसमें मैंने वहाँ जन्नत पे तذکرہ किया, और बाद में पूछा कि बताओ मिलनी किसको है, बाद में कुछ सिस्टर्स कह रही थी आपने तो हमें जन्नत की तलब लगा दी है, तो मैंने कहा वो लगेगी तो दुनिया की तलब कम होगी ना, हम तो अपनी दुनिया को जन्नत बनाने में बैठे हैं। इसी तरह आप देखिए कि जहन्नुम का खौफ कितनी बड़ी चीज़ है, ज़रा सा चूल्हे से आग लग जाए तो आप देखिए कि कितने दिन नींद ना आए, तो कहाँ जहन्नुम हो। तो जन्नत तो इतनी प्यारा घर है जहाँ मौत नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ तन्हाई नहीं है, जहाँ कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, जिसकी हवाओं में भी खुशबू है, जिसके पानी में भी मिठास है, जहाँ अल्लाह का दीदार होने वाला है, जहाँ अल्लाह ताला से रज़ा और रग़बत की बातें होने वाली हैं। तो क्या ऐसी जगह पर बंदे का आने के बाद दिल करेगा, जहाँ लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदान लिहाजा। आज हमारे उस शुक्रगुजारी के सेशन में ये दुआ आई थी कि एक जुमला बड़ा खूबसूरत आज हमने सीखा है कि तंदरुस्ती दुनिया की नेमतों की सरदार है और हिदायत आखरत की नेमतों की सरदार है। जिसको दुनिया में तंदरुस्ती मिल गई, देखिए हर नेमत अच्छी लगती, वरना सोने जैसी चीज़ आपके सामने पड़ी और दांत में दर्द हो खुशी होती? शादी में गए 6 महीने की तैयारियों से बैठे थे, सर में दर्द लग गया, एंजॉय नहीं करेंगे? और आपके सामने मनपसंद चीज़ें बैठी हैं, दांत में दर्द है, नहीं खा सकते। तंदरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है, इसी से औलाद को भी आप इंजॉय करते हैं, इसी से शौहर बीवी खुश होते हैं। माँ को तकलीफ लग जाए बच्चे को पीछे कर देती है, और आखरत की नेमतों में सबसे प्यारी चीज़ हिदायत है, और वो जन्नत ही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। ए अल्लाह तेरी सारी तारीफें, तूने हमें इसकी हिदायत दी, वमा कुन्ना, हम ऐसे नहीं थे, लिनहत दिया कि हम इसकी राह पाते। और जन्नती बातें करेंगे तो सुभानक अल्लाहुम्मा की आवाज़ें आ रही हैं कहीं, सलाम उन कौलम में रब्बी रहीम है, तो जन्नत का तذکرہ किया करें। अपने बच्चों से पूछा करें कि आप बताइए कि आप जन्नत में कैसा कमरा लेंगे, आपके कपड़े कैसे होंगे। जब तक हम ख्वाब नहीं दिखाएंगे बात नहीं बनेगी। बेटा आप क्या पियेंगे, बच्चों के साथ बातें करें। हम अभी लास्ट वीक इस्लामाबाद में थे, तो बड़ी प्यारी स्टूडेंट है और उसके बच्चे उससे भी प्यारे, वो हमारे होस्ट थे, तो उनका 8-9 साल का बच्चा था, तो वो इतने खूबसूरत सवाल सर से कर रहा था, जैसे उसामा मेरे हस्बैंड से, कि मुझे खुशी हो रही थी। तो माँ ने बताया कि ये अक्सर मेरे से एक सवाल करता है कि मामा जब जन्नत बन जाएगी तो फिर ये हमारी दुनिया की चीज़ें किधर जाएंगी। तो उसको इस सवाल का जवाब चाहिए था कि मेरी ये दुनिया की चीज़ें फिर मुझसे छिन जाएंगी। अब बच्चे उसको तो ये दुनिया ही बड़ी प्यारी होगी ना, तो फिर उसको जब जवाब मिला तो वो बहुत खुश हुआ ना। माँ कह रही है कि मैंने अपने इस बच्चे को आदत डाल ली है। अब आपको भी इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इस पर अमल कर सकते हैं, कोई फिकी बातें नहीं है, नसाब तो 7.5 तोले का है ही ना, और बलूगत के बाद है। वो कहती है मैं इस बच्चे के पास पॉकेट मनी या ईद के पैसे जो भी जमा होते हैं ना, हर साल रमज़ान में जितने भी इसके पास पैसे होते हैं, मैं उसमें से 2.5% हिसाब लगा के इससे कहती हूँ अपनी ज़कात निकालो। अब 6-7 साल की उम्र से बच्चे को ये आदत हो गई है कि साल में जितने पैसे जमा होंगे मैंने उसमें से जितने भी बनते हैं 2.5% देने। बताइए बच्चा ये कभी ज़िंदगी में ज़कात छोड़ेगा? बस ये तरबियत होती है, जिस्म का हिस्सा बन जाए। तो लिहाजा अपने बच्चों से, खुद से, घर वालों से जन्नत की बातें किया करें, उससे भी इंशाल्लाह इस दुनिया के गम जो है वो कम हो जाते हैं और दुनिया की हिरस कम होती है। कोई कपड़ा देखा ना बाजार में बड़ा अच्छा है, वो इतना महंगा है, अल्लाह जन्नत में लूंगी, ऑर्डर दे दिए, डिलीवरी जन्नत में लूंगी, खत्म हो गई। ये जेवर बड़ा प्यार है, अल्लाह मैं नहीं संभाल सकती, जन्नत में लूंगी। आप यहाँ ऑर्डर दें वहाँ लें, वल्लाह ही आपको वहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन आप उसकी तमन्ना रखें। और रहेगी जहन्नुम, उसका भी तذکرہ करें। याद रखिए कि जहन्नुम भी हकीकत है। अगर हम गलत काम करें और कहें नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करेगा, तो वो भी नहीं। उधर तो जहन्नुम के दारोगा को पुकार पुकार के लोग कह रहे होंगे कि ए मालिक हमें इस अजाब से निकाल दे, हम दोबारा ऐसे नहीं आएंगे। अपने रब से कह दे कि सिर्फ एक दिन हमारे अजाब में कमी कर दे, थोड़ी देर के लिए निकाल दे, नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से अपने आप को दोनों चीज़ों को रिमाइंड कराना चाहिए, ना तो खुशफहमियों की जन्नत में रहें और ना बिल्कुल धोखे में रहें। और याद रखिए कि गफलतों का इलाज तभी होगा जब हकीकत में हमको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप और मैं हकीकत में गफलत से निकलना चाहते हैं। और एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करती हूँ, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का आपने नाम सुना होगा, कहते हैं कि बेशक ज़िक्र की जो मजलिसें होती हैं ना, जैसे इस वक्त भी हम अल्लाह की याद कर रहे हैं, कहते हैं ये फ़रिश्तों की मजलिसें होती हैं, मजालिस मलाइका की ये होती हैं, और लग़ बातों और गफलत की मजलिसें शैतानों की मजलिस होती हैं। इंसान को चाहिए कि जो चीज़ इसे अच्छी लगती है और इन दो में से जिसे अपने लिए पसंद करता है उसको इख्तियार कर ले, तो वो दुनिया और आखिरत में फिर उन्हीं लोगों के साथ होगा। क्या समझ आया? अगर आपको फरिश्तों वाली महफिल अच्छी लग रही है ये, तो आप फिर इधर आ जाएंगे। तो कल भी उम्मीद है कि हम सारे फरिश्तों के साथ ही जन्नत में होंगे, इंदा मली के मुख्तदर। और अगर लख बात है, अब देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके साथ कितनी देर बोली हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले आपने नमाज़ पढ़ी, मिलके नमाज की दुआएं सीखी, दूसरी दुआएं सीखी। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक बुक्स आ जाएंगी, तो आप बुक से सीखेंगे। 1 घंटा 4 मिनट मैंने आपसे अभी तक बात की है, कमो बेश। आप मुझे बताइए, इसे 1 घंटे में अगर हम ये ना कर रहे होते और इस कमरे में सिर्फ किलो काल हो रहा होना था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमारी खुशी और गमों में क्या होता है आप देख लीजिए। शादियों में चले, अब तो टाइम मुख्तसर होके 2-2.5 घंटे भी रह गए, क्या काम की बात करते हैं। उसकी बेटी, उसकी बहन, ये पहना, उसने खाया, खाना अच्छा ठंडा हो गया, गर्म हो गया, चलो घर जाते हैं, क्या मिला। हकीकत यह है कि आज का हमारा ज़माना गफलत का ज़माना है। अगर हमें चाहिए इस दुनिया में तदब्बुर करते हुए, गौर व फिक्र करते हुए, तो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ज़ाया नहीं करेंगे गफलतों में और इतनी बेकार चीज़ों के देखने में। और आज तो गफलत की हद हो गई जब से ये मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू हो गई, बच्चे के हाथ में, बड़े के हाथ में, आलिम के हाथ में, जाहिल के हाथ में, और अच्छा बंदा तो उसका अच्छा ही इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन जिसको समझ नहीं है उसने तो इसको अपने आप को पता नहीं किधर डाल दिया। नमाजों से गफलत, सारी रात बच्चे टेलीफोन पे खेलते रहते हैं, फजर के करीब मर्दों की तरह पड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह शऊर दिलाना है, अपना भी इलाज करना है और दूसरों का भी करना है। अल्लाह ताला हमारी गफलतों को दूर करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।